तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा
भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा
तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मात् अतः एकेन एकाग्र मनसा मन के ध्यान द्वारा भगवान् सात्वतां भक्तों के पतिः रक्षक श्रोतव्यः सुनने योग्य कीर्तितव्यः गुणगान के योग्य च तथा ध्येयः स्मरण करने योग्य पूज्यः पूजने के योग्य पूजनीय च तथा नित्यदा निरंतर अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण गुणगान स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य यदि परम सत्य का साक्षात ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हरेक में गुणगान श्रवण स्मरण तथा पूजन ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेषतया आधुनिक समाज में तो सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित है। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह तो कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हैं, चाहे वह गुणगान झूठ हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष से राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रचारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि में एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय के अपव्यय है। गुणगान तो उन भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक से आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, इससे सुख उपजेगा। ओम ज्ञान ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनसहायकः चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोदिष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः कदा तो ये शब्द सूत गोस्वामी का है, जिन्होंने जिनसे प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा था। छह प्रश्न पूछे थे, उसमें ये दूसरा प्रश्न का उत्तर शुरू हो रहा है, इस श्लोक से 22वें श्लोक तक। पांच हजार साल पहले नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में सारे महान ऋषिगण एकत्रित हुए सिर्फ एकमात्र उद्देश्य से। उनका उद्देश्य यह था कि अभी कलयुग आने वाला है, आ गया है, और कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे हो और हमारे जीवन भी किस प्रकार सफल हो, ये एक ऋषि का लक्षण है। ऋषि सच्चे भक्त का लक्षण है कि वो न केवल सिर्फ अपनी भलाई चाहता है, पर हमेशा उनको चिंता रहती है कि लोगों का कैसा उद्धार हो। तो बहुत ही कृपा दयापूर्वक सारे ऋषि मुनियों ने निश्चित किया कि 1000 साल तक ये यज्ञ करेंगे। ये निर्णय लेकर नैमिषारण्य में एकत्रित हो गए। वही भागदौड़ नहीं की, एक जगह बैठकर उन्हें विश्वास था कि ये जो सूत गोस्वामी को अगर पूछेंगे और संकीर्तन यज्ञ करेंगे, भगवान का गुणगान होगा, न केवल हमारा इसमें भलाई होगा बल्कि पूरे विश्व का भी हो जाएगा। और कृपा से, दया से भरे हृदय में इन्होंने सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया, जो प्रथम अध्याय का सार भागवत। तो ये सारे 6 प्रश्नों का जो मुख्य प्रिंसिपल ये है कि हमारा कैसा भलाई हो और पूरे विश्व का कैसे भलाई हो। तो ये 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न ये था कि मुनियों के शब्दों में ही मैं कहना चाहूंगा, पुंसा एकांत श्रेय तन्न संसितुम अर्हसि, अतएव दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए। पहला प्रश्न ये है कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। पुंसा मतलब सारे लोगों का, एकांततः मतलब नितांत, इससे बढ़कर और कोई दूसरा नहीं, और श्रेय परम कल्याण, सर्वोच्च कल्याण, और जो सबके लिए हो और हमेशा के लिए, इससे बढ़कर इसके समान और कोई नहीं, ऐसा सबसे श्रेय क्या है। और इसके उत्तर में सूत गोस्वामी ने बताया कि सवई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्षते अहितु की अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्ध। बोले सर्वश्रेष्ठ कार्य, सबसे श्रेष्ठ धर्म है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना, अहितु की अप्रतिहता, बिना कोई हेतु के, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए और कोई हेतु नहीं, और अप्रतिहता लगातार निरंतर, ये सबसे श्रेष्ठ है। फिर उनका दूसरा प्रश्न था कि के प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् निगे जनाः मंद असुन्मतयो मंद भाग्या उपद्रवता। और कहते हैं कि भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु प्रियत सारं समुद्धृत मनीषया ब्रूहि भूयाय भद्राणाम भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्धि। हे विद्वान, कलयुग के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उपलेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करने ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। ये उनका पूछना था, एक को सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है आप बता दो। और फिर कहे, अगर सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है समझ में भी आ गया, कुछ लोग समझ भी गए, फिर भी कलयुग की स्थिति ऐसी है, प्रायेण अल्पायुष, लोगों की आयु कम है। रोगादित्य क्यों? खाने की कमी नहीं है, बिकॉज ऑफ इरेग्युलर हैबिट्स। कभी भी खाया, कभी भी किया, कुछ भी खाया, तो इस तरह से इसके कारण लोगों की आयु कम हो गई। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् निवेदना, कलौ मतलब झगड़ा। आप झगड़ा नहीं भी चाहते हो तो भी झगड़ा हो जाता है, ये कलयुग का लक्षण है। हमने देखा है एक्चुअली, कुछ नहीं भी चाहते तो झगड़ा हो जाता है। बॉम्बे की ट्रेन में एक बार मैं जा रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, लोग आने लगे, किसी ने उसको पीछे धक्का मारा और दूसरे के ऊपर गिर गया, तो उसने एक तमाचा मार दिया। बोला बुढ़े आंख नहीं दिखता, लोग उसने कहा नहीं नहीं पीछे बोलता बोलता उसके ऊपर बोलता भी है वापस, मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं कि क्यों हो गया ऐसे, और वो भी कितना सहन करेगा। लोग उसने भी कहा फिर चलो आधा घंटा चलता, किसी का भी दोष नहीं है, दोनों का भी दोष नहीं है, इसके ऊपर गिरा हुआ उसने मारा चल दिया, ठंडे दिमाग से कोई सोच नहीं, बस झगड़ा हो। कलौ कलौ मतलब छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा, हमें झगड़ा मतलब मन विचलित हो जाता है हमेशा, रजोगुण हो गया। तो प्रायः पहले ही आयु कम, और उस आयु में ही झगड़े झगड़े में ही आधा जीवन चला जाता है। प्रायः अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् निवेदनाः और मंदा आलसी, इस चीज में आलसी, भौतिक चीजों के लिए आलसी नहीं पर आध्यात्मिक चीजों के लिए आलसी, समय नहीं, और सब चीजों के लिए समय है। रात दिन एक कर देते, खून पसीना एक कर देते, और वही आध्यात्मिक प्रगति के लिए किसी को वो उत्सुकता वो इच्छा नहीं। मंदाह सुमंद मतयो, और अगर बाई चांस एक दो को इच्छा भी हो गई तो उसको तथाकथित मार्ग दिखाने वाले हजारों ऐसे संस्थाएं भी, ये करो वो करो वो करो वो करो, बाई चांस बेचारा इधर गिरा पड़ा कोई एक बाई चांस मनुष्य आम सहस्त्रेषु एक इंटरेस्ट हो गया थोड़ा उसको, तो उसको भी पथभ्रष्ट करने वाले सुमंद मतयो अलग अलग मत देने वाले, ये करो वो करो, बहुत सारे ऐसे। क्योंकि कलयुग में क्या है, जिस चीज का डिमांड है वैसा प्रोडक्ट आता है, और कलयुग में लोग तंग आ गए, आध्यात्मिक इच्छा पैदा हो रहा है उनको, तो मार्केट में आध्यात्मिक संस्थाएं बहुत है, क्योंकि जैसा डिमांड है पब्लिक में वैसा प्रोडक्ट बनाते लोगों को मालूम है, सब लोग आध्यात्मिक ढूंढ रहे, अलग अलग आध्यात्मिक चीजें चल रहा है, कुछ भी, एक कहते एक दूसरे को गला लगाओ और मैं करो मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, बस यही आध्यात्मिक हूं। किसको भी जो भी सामने आए, स्त्री आए पुरुष आए, गले लगाओ, उनका वही काम है बस। गुरु जी आते बैठते बोलते चलो शुरू करो, सब लोग एक दूसरे को दूसरे के पास जाते, मैं तुम्हारा हूं गले लगाओ। इसको अध्यात्म ही कहते और थोड़ा सांस ले लिया ऊपर नीचे। तो इस तरह से हजारों चीजें आध्यात्मिक चीजों के नाम में चलती है। क्यों? सुगंध होगी कलियुग का लक्षण, मंद भाग्या वेरी अनलक्की, दुर्भाग्यशाली। कल हम पढ़ रहे थे दुर्भाग्य, दुर्भगा दुर्भगांश। क्यों दुर्भाग्य है? थोड़ा जो समय मिलता है गधे के समान काम करना ही पड़ता है, जस्ट चार रोटी और खाना खाने के लिए पूरा दिन उसी में चला जाता है। परिस्थिति ऐसी है कलयुग की, जस्ट थोड़ा कमाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, मनुष्य जीवन देना पड़ता है, और उसमें भी के थोड़ा समय मिला तो उसमें भी इतने सारे डिस्ट्रैक्शन, इतने सारे वीडियो, इतने सारे सिनेमा, इतने सारे टीवी, इतने सारे स्पोर्ट्स, ये वो, इतने डिस्ट्रैक्शन है कि बाई चांस अगर इधर मुड़ के देखा तो उधर उसको खींचने वाले बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन। अच्छा, अलग अलग प्रकार के आधुनिक जो चीजें ऐसी बन रही है तो न चाहते हुए थोड़ा ऐसा देखा आंखें खींच लेती, खींचा जाता है मंद भाग गया। और ये सब करने के बाद ऊपर दुर्गा हमेशा चिंतित रहता है। तो उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति को वैदिक शास्त्र आपने तो बताया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। पर उनका कहना है ये वैदिक वाङ्मय भी इतने सारे हैं, भूरीणी भूरी कर्माणी श्रोतव्यानि विभागशः। शास्त्रों का अनेक विभाग है, सबसे पहले शास्त्र, आप शास्त्र भी कहेंगे तो कितने शास्त्र हैं, महाभारत, रामायण, थारा पुराण, फिर सारे उपनिषद, तो कब पढ़ेंगे? सबसे पहले उसको सीखने के लिए संस्कृत समझना चाहिए, संस्कृत सीखने के लिए 11 साल पूरा, पाणिनि व्याकरण अगर मास्टर करना है तो 11 साल लग जाएगा। उसके बाद उन लोगों को भगवद गीता का 700 श्लोक पढ़ने के लिए समय नहीं, 11 साल क्या निकालेंगे? संस्कृत पढ़ने के बाद हजारों हजारों लाखों लाखों वैदिक वाङ्मय के श्लोक है, वो सबको कब पढ़ोगे, उसका सार कब निचोड़ निकालोगे? क्यों? क्योंकि आयु बहुत कम है। तो इसीलिए कहते हैं बहुत सारे शास्त्र हैं, वैदिक वाङ्मय हैं, और उन शास्त्रों में बहुत सारे विधि विधान बताई गई है, कर्मकांड बताया गया, अनकांड बताया गया, उपासना कांड बताया गया, बहुत सारे विधि विधान बताए, डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। सही है, क्योंकि अलग अलग स्तर के लोग हैं इसीलिए अलग अलग प्रकार की विधि विधान बताई गई है। तो पहले शास्त्र अनेक हैं, उनमें विधान अनेक हैं, और उन एक एक विधानों को अच्छी तरह से अभ्यास करके समझने में और उतारने में अनेक साल लग जाते हैं। तो शास्त्र अनेक, उसमें विधान अनेक, और उसको सीखने के लिए समय दीर्घकाल लगता है एक तरह वो, और दूसरे साइड में प्रायण अल्पायुषः कलौ मंदा सुमंगमतयो मंद भाग्य है, कैसा कॉम्बिनेशन, एब्सोल्युटली किसी को समय नहीं है, समय है भी तो इच्छा नहीं है, इच्छा है भी नहीं, इच्छा है भी तो वो पथ भ्रष्ट करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उसमें से बाई चांस कोई बच के भी आया और वैदिक मन में समझने की अच्छी इच्छा भी किया, कब समझेगा, समय बहुत कम है उसके पास। देखिए ये इन ऋषियों का प्रश्न है, इसीलिए कह रहे हैं कि क्विक, कलयुग मतलब क्विक रिजल्ट, शॉर्टकट बताइए, जो बुद्धिमत्ता है शॉर्टकट, परीक्षा आ गया उस समय बच्चा तुरंत जाके टीचर से पूछाया टीचर इसका उत्तर बताइए, एक मिनट उसका बैकग्राउंड पहले बताता हूं कि विषय कैसा शुरुआत हुआ 500 साल पहले, सर ये वो मत बताइए, अभी उत्तर बताइए इसका, टिक करना वैदिक। अरे नीति शास्त्र कहता है न कूप खननम युक्तम प्रणीते वंधिना गृहे, घर में आग लगी है बोले चलो कुआं खोलेंगे, अभी कुआं खोलने का टाइम नहीं, घर में आग लगी है पानी चाहिए अभी, बोले नहीं एक ड्रिल करने वाला उसको बुला के लाते, वो ड्रिल करेगा फर्स्ट क्लास पानी आएगा, तब तक आने तक घर के रात हो जाएगा घर। नकूप खनम युक्तम प्रदीप्ते वंधिना गृहे, घर में आग लगी है उस समय अच्छी बात नहीं है कि उस समय, बोले अब सार बताइए एसेंस। इतने सारे वैदिक वाङ्मय हैं, इन सारे वैदिक वाङ्मय का उद्देश्य क्या है, मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है, बस इतना बता दिया, ताकि कलयुग के बद्ध जीव तुरंत इसको स्वीकार करे और अपना जीवन सफल करे, क्योंकि समय बहुत कम है। और उसके उत्तर में पहले तो शुद्ध गोस्वामी ने बता दिया सबसे श्रेष्ठ चीज है भगवान की भक्ति, और अब श्लोक क्रमांक 14 से 22 तक दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सार क्या है, सारे वैदिक वाङ्मय में सारे जितने सारे विधि विधान बताए गए हैं उनको सीखना बहुत समय है, पर उसका सार एक ही है, और सार इस श्लोक में वर्णन है। तस्मात, इसीलिए, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ चीज है मनुष्य योनि में, प्रेमापमान तो भगवत प्रेम को प्राप्त करना सर्वोच्च चीज है, इससे बढ़कर श्रेय और कुछ नहीं है। पुरुषार्थ शिरोमणि, चार पुरुषार्थ बताए गए, धर्मार्थ काम मोक्ष, पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। और वो पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आप अगर आप समझ गए कि वो पुरुषार्थ है तो उसे प्राप्त करने के लिए विधि विधान है। विधि विधान का उद्देश्य है, ये साधन है, विधि विधान साधन है साध्य प्राप्त करने के, साध्य यानी भगवान की शुद्ध भक्ति भगवत प्रेम। और विधि विधान बताए गए हैं, और विधि विधान का सार क्या है, अगर भगवत प्रेम लक्ष्य है तो उसके विधान जो विधि है वो क्या है, तस्मा, इसीलिए, अतः जिस व्यक्ति ने निर्णय कर लिया कि भगवत प्रेम सर्वोच्च है, अतः उसके लिए सारे विधि विधान का एक ही उद्देश्य क्या है, तस्मात एकेन मनसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेन पूर्णोन्मन। यशस्वी व्यक्ति वो हो सकता है जो एकाग्रचित्त हो जाता है, फोकस। भौतिक संसार में भी वो व्यक्ति यशस्वी हुआ है जो बड़ा फोकस रहा है कि मुझे वही करना है, मुझे यही करना है, मुझे यही प्राप्त करना है, और उसके लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करूंगा, जो प्रतिकूल है उसको त्याग दूंगा, क्योंकि मुझे जाना उधर ही है, प्राप्त वही चीज करना है। तो तस्मा एकेन मनसा, एकाग्र चित्त होकर श्रोतव्य सुनना, कीर्तितव्य कीर्तिगान करना, ध्येय ध्यान करना, पूज्यस्य पूजा करना शरणागत होना, नित्यदा निरंतर आत्म साक्षात्कार का मतलब यही है। समाधि का मतलब है समाधि, समाधि मतलब एब्जॉर्प्शन, और समाधि का डेफिनेशन क्या है, सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्वं याथात्मं इति समाधि। सम्यक मतलब फुल, मन वाणी बुद्धि इंद्रियां सब सम्यक अधीयते एक जगह अस्मिन् आत्मतत्वं याथात्मं इति समाधि, आत्म साक्षात्कार के लिए उसको पूरा जोड़ देता है वो व्यक्ति समाधि में, चाहे कुछ भी कर रहा गोपियों के समान मक्खन के क्यों मक्खन की तरह पूरा शरीर लगा के मक्खन करे ताकि कृष्णा के उसको छीन, वो समाधि में थी, और करते लगते कृष्ण का गुणगान करके कृष्ण ने क्या क्या सुंदर लीला की, गोपियां समाधि में, हालांकि वो अपने घर के काम में लगी हुई है वो समाधि में, क्योंकि कुछ भी कर रही है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही है। अर्जुन कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर रहा है और वो समाधि में, क्योंकि जो कुछ भी कर रहा है शरीर से, पानी से, मन से, बुद्धि से जो भी कर रहा है सिर्फ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो क्योंकि वो एक योद्धा था, लड़ रहा है, धर्म युद्ध लड़ रहा है, पर समाधि में शत प्रतिशत, क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहा है भगवान की प्रसन्नता। तो उसको इच्छा नहीं थी लड़ने, लड़ाई लड़ने की, ले जाने को रख लेते, मुझे नहीं मार, छोटे मोटे चीज के लिए इतना सब झगड़ा करने की जरूरत है, उनको ही रहने, मैं भीख मांग के जीऊंगा नहीं। भगवान ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम लड़ाई करो, तुम ही लड़ सकते हो, क्षत्रिय हो, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं हो सकता बुरा। सो तस्मात एक ही अनुभव श्रोतव्य कीर्ति तव्य भी रूपा जी समझाते हैं, बहुत सुंदर से समझाते हैं। ये चार चीज आप देखोगे पूरी दुनिया में, चाहे कोई वर्ण हो कोई आश्रम हो, ये चार चीज सबके लिए, चाहो या नहीं चाहो, सब लोग कर रहे हैं। किसी न किसी व्यक्ति का हमेशा हम श्रवण करते रहते हैं, और जिसका बार 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 श्रवण करेंगे उसका, उसके बारे में बोलेंगे कीर्तन कीर्तिगान, और जिसका बार बार कीर्तिगान करेंगे उसका स्मरण हो जाएगा, और जिसका स्मरण करेंगे बार बार उसके प्रति प्रेम हो जाएगा, उसका फोटो बना के उसको पूजा करेंगे। स्वाभाविक है आज की दुनिया में, खास करके नौजवान लोग, सब लोग साधारण किसके बारे में सोचते हैं, न्यूज़पेपर में देखो, मीडिया टीवी में देखो, कहां देखो, किसी न किसी एक व्यक्ति का गुणगान चल रहा है, वह हीरो बन जाता है, एक दिन के अंदर हीरो बन जाता है, कल कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम था कि कौन है, उसने कुछ ऐसा कुछ तो एक काम कर दिया, एकाएक हीरो बन गया, कल तक उसको कोई नहीं जानता था, पर आज क्रिकेट टीम में गया और उसने ट्रिपल सेंचुरी मार दिया, डेब्यू फर्स्ट, एकाएक हीरो बन गया। सब जगह जहां भी देखो, न्यूज़पेपर में इतना बड़ा उसका फोटो, ट्रिपल सेंचुरी एंटर्स क्रिकेट करियर में, ट्रिपल सेंचुरी लास्ट, फेमस बन गया हो। टीवी में देखो, मैं ये साबुन उपयोग करता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं ये करता हूं, कल तक वो कुछ भी खाता था तो कोई नहीं खाता, कोई किसी को चिंता नहीं थी वो क्या खाता है, कहां सोता है, कौन सा पैंट पहनता है, कौन सा कैप पहनता है, कौन सा गंजी पहनता है, कोई बहुत पूछता है, सब लोग अपना अपना गंजी पहनते, तेरे को मेरे को जो अच्छा लगता मैं पहनूंगा, क्योंकि उसने ट्रिपल सेंचुरी मारा, ठीक है कि लकड़ी को लेके गेंद को मारा, कौन सा बड़ा काम किया, शूद्र का काम है, पर क्योंकि बार बार न्यूज पेपर उसका गुणगान करके, बार बार टीवी में उसका फोटो आता है, तो बच्चे क्यों भी देखते रहते हैं, बस यही ये हमारा हीरो, बस तो श्रोतव्य एडवर्टाइजमेंट में उसको वही आता है, मैं ये टीवी देखता हूं, मैं ये करता हूं, ठीक है टीवी में देखो, वही न्यूज पेपर में देखो, वही श्रोतव्य 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 कीर्तितव्य, क्या मारा उसने, क्या मारा उसने, उसका फ्लैश लाइट देखा, उसका ये देखा वो देखा पूरा, उसका ऑटोबायोग्राफी आ गया, वो तो क्या क्या खाता है, उसको क्या अच्छा लगता है, दीज आर ए फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, मेरे को ये करना अच्छा लगता है, मैं भी वही करूंगा, कीर्तितव्य ध्येय हमेशा ध्यान करना, वो ये पहनता है मैं भी वो करूंगा, उसका ऐसा हेयर स्टाइल मैं भी ऐसा हेयर स्टाइल, अगर सर पे बाल नहीं है मैं भी साइड में सिर्फ बाल छोड़ दूंगा, ऊपर का काट लूंगा, क्योंकि उसका नहीं है ना ध्येय और पूज्य से, जिसका श्रवण करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, ध्येय ध्यान करते रहोगे, उसका फोटो आ जाता है आपके कमरे में, इसके समान मैं भी बनना चाहूंगा, बस चाहे पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिकल सीजन में पॉलिटिशियन हीरो बन जाता है, क्रिकेट सीजन में क्रिकेट वाला हीरो बनता है, कोई अच्छा सिनेमा आ गया तो सिनेमा वाला हीरो बनता है, ऐसे हीरो आए गए इस भाव सागर में, कभी एक लहर चढ़ा दो महीने के लिए चढ़ा, कोई एक तीन महीने के लिए चढ़ा, कोई दो साल के लिए चढ़ा, और गए वो लोग, कई लोग आए कई लोग गए, और उस समय कई लोगों का चित्त उन पे एकाग्र था, एकेन मनसा तस्मात एकेन मनसा, पर क्या फायदा हुआ उनको, जिस व्यक्ति ने उसका पूजा किया, ध्यान किया, श्रवण किया, कीर्तन किया, ध्यान और पूजन किया, क्या उसको कोई फायदा मिला, और जिस व्यक्ति का गुणगान किया वो कहां गया, अंधाय अंधी उपनीयमान तीप ईश तंत्र अनुदानी बद्धा। दोनों बंधे हुए, दोनों बड्ढे में गिर गए, चोर गुरु चंदाल चेला नरक में जाए खेलत खेलता। एक बार बोले थे ऐसे गुरु और उनकी ऐसे चेले, अंधा गुरु अंधा चेला दोनों गड्ढे में गिरते। तो पर ये प्रिंसिपल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बदले इधर उधर के छोटे मोटे हीरो के बदले सही हीरो को पूजा करो। रूप गोस्वामी कहते हैं हु इज द रियल हीरो, नायकानाम शिरो रत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नायकानाम बड़े बड़े नायक हैं हीरोस, नायकानाम शिरो रत्नम द क्रेस्ट ज्यूवल ऑफ ऑल हीरोस कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों? यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा, जिसके अंदर सारे अच्छे गुण नित्यतया विराजमान हमेशा के। ये सब जुगनू के समान है जो एक सीजन में चमक के चले जाते और वो भी क्या एक झलक दिखाते हैं लोग, बस कोई अच्छा नट है, कोई अच्छा बल्लेबाज है या कोई अच्छा बोलने में बहुत माहिर है इसलिए वो वोट मिल जाता है। पर नहीं, भगवान जो है ये सब कुछ है और भी ज्यादा है, और इनके अंदर ये सारे महान गुण हमेशा के निवास करते हैं। तो ऐसे हीरो को क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों ने सुना नहीं इसके इनके बारे में। इसीलिए एक्चुअली शास्त्रों का सार बताया गया पद्म पुराण में वर्णन है, बहुत सारे विधि विधान है, पर विधि विधानों का विधि और निषेध का सार क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न चाहुचित सर्वे विधि निषेधा स्युः एतयोः एव किं करः। शास्त्र कहता है स्मर्तव्य सततम विष्णु, सारे विधि विधान सारे वैदिक वाङ्मय का एकमात्र उद्देश्य है दास वेदश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। वेदों का मेन उद्देश्य है एक व्यक्ति का को जानना, और जानने के बाद उसको सुनने के बाद उसका कीर्तन करने के बाद ध्यान करने के बाद शरणागत होना। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु, जितने सारे वेदों में विधि विधान है सारे विधियों का उद्देश्य एक ही है। आप विधि का पालन कर रहे हो पर उसका उद्देश्य क्या है? क्या आप भगवान को हमेशा स्मरण कर रहे हैं या नहीं? अगर स्मरण नहीं है तो ये विधि विधान श्रवणीय ही केवल स्थूल कुशावघातिना, ऐसे धान्य को पीट रहे हो जिसके अंदर धान्य है ही नहीं, फिर छिलके को मार रहे हो। तो ऐसे विधि विधान व्यर्थ है जिसमें अगर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाहुचित, और जितना निषेध बताया गया ये मत करो वो मत करो वो मत करो क्यों मत करो? क्योंकि वो तुम्हें भगवान का विस्मरण करा देगा। नाचार मत करो, नशा नहीं करो, जुआ नहीं करो, विचार क्यों? क्योंकि भगवान का विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि तुम शरीर के स्तर पर आ जाओगे, शरीर का हमेशा स्मरण रहेगा, आत्मा का स्मरण, आत्मा के संबंध भगवान का जो भगवान के साथ आत्मा का संपर्क है उसका जो स्मरण है चला जाएगा, सनातन धर्म चला जाएगा, सनातन जो जीव का भगवान के साथ रिश्ता है वो भूल जाओगे तो सब विस्मरण हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए स्मर्तव्य सर्वम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाहुचित सर्वे विधि निषेधा, जितने सारे विधि और निषेध हैं इन दोनों विधि निषेध के किंकरा उनके अनुगत है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आपके सारे विधि और सारे निषेध फालतू है, क्योंकि हिटलर भी जो था वेजिटेरियन था, वेजिटेरियन बनना तो मनुष्य का जीवन का उद्देश्य नहीं, बंदर भी वेजिटेरियन है, हिटलर भी वेजिटेरियन था, हजारों को मारना था। अंततः स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाहुचित, क्यों? भगवान सात्वतां प्रति ही सात्वतां पति ही, खास करके भगवान तो सनोहन सन सबके प्रति समान है, पर सात्वतां पति ही खास भक्तों के रक्षक हैं वो, दुनिया में सबकी रक्षा करते हैं वो, पर खास उनका हृदय जो है भक्तों के प्रति है। तो ऐसे व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली है, जो बचा सकता है और जो खास करके भक्तों के प्रति बहुत कृपामय है, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसके बारे में सुनना, उसका पूजन छोड़ के और किसका किसका कर रहे हो भाई, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? बस एक ही विधि विधान है, अगर ये आप कर रहे हो निरंतर नित्यदा, अगर भगवान का कीर्तन श्रवण स्मरण और पूजन कर रहे हो, सारा विधि विधान ऑटोमेटिकली आप पालन कर रहे हो। एक भाव भक्त जो है, एक बहुत ऊंचा, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, कभी कभी वो साधना भक्ति में ढीला पड़ जाता है, साधना भक्ति में ढीला पड़ जाना मतलब क्या, नियमों में शायद कभी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा, हम लोग नियम में बिरला को टच नहीं करना चाहिए जमीन में। पर एक बार मैंने देखा प्रभुपाद आए एक वृंदावन में, देख रहे थे कृष्ण बलराम मंदिर में, और सीधा प्रणाम किया, बेड बैग ऐसे ही था, टाक करके लगा नीचे। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से मग्न है कृष्ण प्रेम। तो कभी कभी उनमें ऐसा नजर आता है कि थोड़ा विधि भी जानते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तीन बार आचमन नहीं किया, दो ही बार करके चले गए, छोड़ो चले गए, वो आचमन करने का उद्देश्य है स्वर्तव्य समाधान मिशन। इसीलिए महान भक्तों के बीच छोटा छोटा रीति रिवाज होते हैं, ऐसा नहीं झुका, ऐसा झुक गया, देखेंगे तो अपराध हो जाए, गंगा भसान खनगुद बुद फेंक पकड़े। भौतिक रूप से एक महान व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मग्न है। कभी कभी बाहरी रूप से शायद उस साधना में थोड़ा वो, जो हमें करना चाहिए, नौ संख्या भक्ति के साथ करना चाहिए, हमें स्टिक होना चाहिए, और वो उसका सार जो है ऑलरेडी अपना रहा है। जैसे गौर किशोर दास बाबा ना स्नान नहीं करते थे, अरे स्नान नहीं करते, कैसा भक्त है स्नान ही नहीं करता, वंशीदास बाबा जी 17-17 दिन तक स्नान नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु बाह्य, कभी कभी बाह्य को, बाह्य हो ये छोड़ कर, और करते भी थे तो ऐसा मतलब अपने आप मशीन में चल रहा है, मन उनका कहीं और, वो दूसरी बात, जब हो जाएगा प्रेम तो अपने हो जाए, वो नहीं है। तो इसीलिए ये सब करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि धीरे धीरे स्मरण होते रहे, स्मरण होते रहे। एक बार नारद मुनि ने देखा गोपियां जप कर रही, ध्यान लगा, अरे वाह गोपियां ध्यान कर रही है अष्टांग योग, तो आश्चर्यचकित हो गए, गोपियां से पूछा क्या कर रहे हो, बोले ये जो कृष्ण है ये हमारे मन में घुस गया, निकलता ही नहीं, इसको निकालने के लिए ध्यान करके निकालने की फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, निकलता ही नहीं हो। हम लोग अरे कृष्ण ध्यान लगाने जाते हैं, आते ही नहीं है वो अंदर, जबकि समय ही वो दूसरे जगह मन जाता है, वो अंदर नहीं आते। गोपियों का दूसरा प्रॉब्लम था, अरे हम कुछ करने जाती है तो उसी का स्मरण होते रहता है, हम निकालने की कोशिश करते हैं, अरे हमको कुछ अपने काम में ध्यान दो, ये हमको सता रहा है, हमेशा है इसका स्मरण, क्यों प्रेम का हम खेलते। जिस व्यक्ति के साथ प्रेम है स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान होगा, हमको प्रेम नहीं है तो प्रेम लाने के लिए जबरदस्ती उसका सुनना है, जिसका जिसके प्रति आप प्रेम करते हो उसके बारे में सुनना क्या तकलीफ है, और थोड़ा सुनना वाह कितना सुंदर लगता है, उसका बोल उसके बारे में बोलना तकलीफ है आपको, क्या तपस्या है, चलो जिसको आप बहुत प्रेम करते हो उसके बारे में थोड़ा सुनना हमको, टाइम नहीं है, नहीं बोलते रहेंगे थक जाएंगे, समझता भी नहीं बोलते रहेंगे, ध्यान करना तकलीफ है, उसको भूलना तकलीफ है जिसके साथ हम प्रेम करते, उसका पूजन करना उसका गुणगान करना तकलीफ है नहीं, पर हमारे लिए विधि विधान बताया तस्मात एकेन मनसा, ध्यान लगा कोशिश करना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, क्योंकि वो सात्वतां पति है, भक्तों के प्रति बहुत ही कृपालु दयालु है, और वो रक्षा कर सकते, कौन्तेय पति जानीहि नमे भक्त पुनश्यति, कोई भी आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनका आश्रय लिया है और जो निराश्रय हो गया है अंत में जीवन के अंत में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सब अच्युत है, भगवान इस इनफैलिबल है, कभी चुकते नहीं अपने निर्णय प्रॉमिस जो वचन दिया है, सत्य व्रतम, उनका व्रत सत्य है। प्रभु रामचंद्र ने कहा एक बार भी अगर किसी ने कहा कि प्रभु मैं आपके शरण आ गया, वो सुंदर श्लोक है रामायण में, सकृदेव प्रथम प्रपन्न, सकृत सकृत मतलब एक बार भी, एक सकृत एव प्रपन्न अयम, अगर भगवान के सामने आप कहते कि प्रभु मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण गया आज में, और बाद में आप भूल जाओगे, कल सुबह भूल गए किसकी शरण गए थे, आपको नहीं भूलेंगे वो, आप नहीं भूलेंगे वो, सकृत एव प्रपन्न अयम तव अस्मी इति च याचते, शरण जाकर पूरे दंडवत प्रणाम करके अगर एक बार भी उनको बोले सक्र, सक्र मतलब एक बार भी, प्रभु रामचंद्र हनुमान को कहते हैं जब विभीषण आके शरण लेता है, विभीषण इतने दिन तक रावण के पक्ष में था पर रावण राम की शरण आया, प्रभु रामचंद्र सब वानरों के सैनिक के सामने बोलते हैं वचन देते हैं, उनका व्रत है सत्य व्रतम, कभी चूकते नहीं, क्या बोले सक्र एक बार भी अगर प्रपन्न पूर्ण रूप से शरण अगर, दंडवत प्रणाम करने का उद्देश्य ये, दंडवत को बाहर से करते हैं पर हमारा ईगो एकदम फर्स्ट क्लास स्ट्रेट खड़ा होता है, ताकि कम से कम शरीर झुकेगा तो धीरे धीरे मन और अहंकार भी झुक जाएगा, पर सकृत एव एक बार भी अगर प्रामाणिकता से प्रणाम करता है प्रपन्न शरण जाकर, तव अस्मि मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरे इस दीन बंधु दीनानाथ मेरी बंधु तेरे हाथ, अब जैसा खींचो मैं खींचो, तव अस्मि मैं आपका हूं, ऐसा अगर याचना करता है हृदय पूर्वक तो भगवान क्या आश्वासन देते हैं, अभयम उसका भय दूर कर देता हूं, सबसे बड़ा भय क्या है मृत्यु का भय, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हर एक व्यक्ति भयभीत है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर एक व्यक्ति को भय है, दुनिया मान अपमान का भय, मृत्यु का भय, सब कुछ खोने का भय, हम मृत्यु मतलब सब कुछ खो बैठता है आदमी, पर अभयम भजहुरे मन श्री नंदन अभय चरण अरविंद है, परीक्षित महाराज देखिए, परीक्षित महाराज तो 7 दिन का नोटिस था, और जब अंत में क्या कहते हैं आप ये अमृत सुनाओ कथा सुनाओ अभी मुझे, अभी वो जो कुछ आना है आने दो, जो पक्षी आके काटना है काटने दो, वो अपना काम करने दो, आप अपना काम कीजिए सुनाते रहिए, मैं अपना काम करूंगा सुनते रहूंगा, तीनों अपना अपना धर्म करते रहे, चलिए एब्सोल्यूट अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, भगवान कहते हैं कि मैं दूंगा एतम व्रतम, ये मेरा व्रत है, अगर एक बार भी व्यक्ति मेरे सामने आकर कहता है कि प्रभु मैं आपका प्रपन्न हो तव अस्मि इति याचते, याचना कर हेल्पलेस, एक्चुअली हम लोग ये माया की शक्ति है कि कभी कभी हम समझते हैं कि हम अपने संरक्षण कर सकते हैं, एक्चुअली हर क्षण हम लोग निस्सहाय, हर क्षण कभी भी किसी को कुछ हो सकता है, अभी पंखा मेरे सर पे गिर गया तो, अभी भूकंप हो गया, अभी जो लेटे हुए थे वहां भुज में उधर क्या मालूम था, आराम से लेटे हुए थे, कल सुबह उठ के प्लानिंग कर रहे थे, सुबह कोई उठाए, एक्चुअली ये माया है, हमको लगता है कि अभी बहुत सारा टाइम है आराम से, नहीं किसको कब क्या स्थिति आएगी क्या मालूम, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् प्रथम मम, इन व्यक्ति का शरण गए सत्वतम पति, कभी आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शरण जाने के बाद निराश्रय हुआ, इसीलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं सारे ऋषि मुनियों को उनके द्वारा हमेशा हमेशा के लिए भागवत में लिखकर हम सब बद्ध जीवों को कि अगर कोई सुनने व्यक्ति योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, शरण जाने योग्य है, तो सात्वतां पति भगवान श्री कृष्ण। थोड़े दिन पहले हमारे गोविंद प्रभु बेलगाम गए थे। बेलगाम में एक माता जी है, वो बहुत ही टीचर की वाइफ है, तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थी। तो उसे गए थे, वो बोल रही है ऊपर वहां लिखी राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति हार नहीं को। और वो कह रही थी जो इस दो लाइन को समझ लिया ना वो सफल हो गया, और जो इसको नहीं समझा वो गया। कुछ नहीं समझा वो जीवन है मरण। भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं मानस देह के हो जो कि छुपो अर्पित द्वापदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मनो गेना तुआ पद। मैंने संपदे संपदे में मतलब जब ठीक ठाक हूं, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा है, स्वास्थ्य एकदम फर्स्ट क्लास है, तब भी मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। विपदे अभी संकट आ गया, ब्रह्मास्त्र मेरे सर पे ऊपर आ गया है, फिर भी मैं आपके कहूं कृष्ण कृष्ण महाभाव। संपदे विपदे जीवन है, जीवन है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम मृत्यु के समय मरण है। दाय मनो देना मैं सारा जिम्मेदारी मैं को जिम्मेदारी मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ दिया। जीवन दाय मनो गेला तू बदल बस मैं आपके सामने, ये जीवन की सफलता है एक्चुअली। और जो इस भावना में रहता है 24 घंटा उसका जीवन सफल, और वही शास्त्रों का सार है। और ये आप बड़े बड़े शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, समझे या नहीं समझे, बट अगर ये एक बात समझ गए तो सारे शास्त्रों का सार निचोड़ आपने समझ लिया। अच्छा, और दूसरे श्लोक में कहते हैं क्यों क्यों भगवान का स्मरण हमेशा ध्यान हमेशा क्यों, बहुत सुंदर कहते कहते हैं अगले श्लोक में क्यों ध्येय ध्यान करना क्यों है भगवान का, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर क्यों स्मरण करना है क्यों विस्मरण नहीं करना है। कहते हैं यद अनुध्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदस्तस्य कौन कुर्यात् कथारति। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं, अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। यद अनुध्य असिना युक्ता, आप कोई पूछ सकता है क्यों भगवान का स्मरण करना है, हम कीर्तन कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं क्योंकि स्मरण हो हमेशा, क्यों स्मरण करना है, स्मरण करने से क्या फायदा है। यद अनुध्य यद यद मतलब जिसका अनुध्य यानी ध्यान असीना, भगवान का ध्यान करना एक तलवार के समान उदाहरण दिया गया है। यद अनुध्य असीना युक्ता, जिसके हाथ में भगवान के स्मरण का तलवार है वो तलवार क्या कर सकता है, कर्म ग्रंथि निबंधन छिन्दन्ति गांठ, कैसा गांठ, जब शुद्ध जीव भगवत धाम से उसका भौतिक संसार में पतन होता है तो वो आत्मा को भौतिक संसार जो शरीर है शरीर और आत्मा को जोड़ के माया देवी एक गांठ बांध देती है, और वो गांठ क्या है, मिथ्या अहंकार का गांठ। तो एक जगह शरीर है और एक जगह आत्मा है, आप ध्यान से इसको गौर कीजिए, शरीर जो है हमेशा मरा हुआ है, एक्चुअली ये शरीर हमेशा मरा हुआ है, ये कभी जिंदा था नहीं और ये कभी जिंदा होगा नहीं क्योंकि ये जड़ है। अभी जिंदा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा चल फिर रहा है। तो ये जो क्या बोलते हैं शरीर है, अगर इसको कुछ तकलीफ हुआ तो हमको तकलीफ होता है, पर एक मृत शरीर को काटो तो कुछ नहीं होता है, शरीर हमेशा मरा हुआ है, शरीर कभी जिंदा ही नहीं था, और आत्मा कभी मर ही नहीं सकता, उसको तो पेन, अगर आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा का खून नहीं निकाल सकता, और शरीर जो है वो हमेशा मरा हुआ है। तो पूछते हैं तो दर्द किसको हो रहा है? शरीर अगर हमेशा मरा हुआ है उसको दर्द होता है कि जड़ है वो, और आत्मा को तो काट नहीं सकता, तो महाराज दर्द किसको हो रहा है, तकलीफ किसको हो रहा है? क्यों? क्योंकि आत्मा जो है अहंकार के साथ बंधा हुआ है, और बंधा होने के कारण जो कुछ भी शरीर से गुजरता है वो आत्मा को स्पर्श होता है। जैसे मेरा सुंदर कपड़ा है और परसों हम लोग गए थे कहीं तो वहां फिसल के गिरा और कचरा हो गया, बोला अरे बहुत दुख हुआ हृदय को,
ये सब कुछ
मार्क सब आ गया, चिकन उसके फिसल के गिर गए। तो बोला इतना अच्छा कपड़ा, कपड़ा तो थोड़ा गंदा हो गया, फिर को छोड़ देते हैं नया कपड़ा खरीदा, क्योंकि मेरा कपड़ा है तो कपड़ा को थोड़ा फट गया। आप समझ लीजिए शोरूम में जाते हैं और अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं, आते ही शोरूम के बाहर एक ठेला लगा हुआ है, खराब फट गया, बोला अरे पांच हजार रुपया लेके साड़ी खरीदा फट गया, क्योंकि मेरा लगता तो साड़ी फट गया तो हमको लगता हमारा हृदय भी फट जाता। क्यों कहने में कोई कहता नहीं आप थोड़ी है साड़ी हो, वो है पर मेरा है ना ये, क्योंकि और इसीलिए दर्द हो भाई, स्वाभाविक है दर्द होगा। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है भीषु पितामह पूरे पूरे शरीर आर पार हो गया था इतने, ऐसा नहीं है कि उनको दर्द नहीं हो रहा था। कोई मूर्ख कोई मायावादी अगर कहता है कि नहीं अभी शुद्ध भक्त है इनको तकलीफ नहीं होता, तकलीफ 100% होता है, परम दृष्टवान निवर्त थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के स्मरण शक्ति में मग्न थे, उनके लिए ये तरता सहन हो जाता है। जैसा एक छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते और इंजेक्शन होने लगता है बच्चा ऑलरेडी, तो बच्चे को जब इंजेक्शन लगाता है बहुत रोता है, और जब बड़े आदमी को लगाया जाता है उसको इंजेक्शन देखता है बोला अरे बाप रे दर्द होने वाला है। क्या आदमी को कम दर्द होता है बच्चे को ज्यादा दर्द होता है इंजेक्शन लगाने से? अरे दोनों को एक ही दर्द होता है, पर जो बड़ा आदमी है समझ सकता है अभी दो मिनट के लिए भी तकलीफ होगा, उसके बाद दो साल के लिए आना सारा पोलियो वोलियो नहीं होगा, लगाओ डॉक्टर थोड़ा इस तरह मुड़ जाते हैं तांस्थितिक स्वभाव है, तांस्थितिक सहन करो ये तो होना ही है, सुख दुख है ये तो तरीका है। दो कॉइन है एक सिर्फ सर चाहिए और उसका क्या बोलते हैं कॉइन का ये साइड चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं दोनों सही है, संसार मतलब दोनों का है, नहीं तो थोड़ा उस तरह घूम लाने का हो गया क्या? धन्यवाद डॉक्टर ये तो 5 रुपये, और जिसने इंजेक्शन मारा उसको धन्यवाद दे रहे 5 रुपया भी दे रहे, क्यों? क्योंकि मालूम है ये जो दवाई दिया है ना ये एक्चुअली उसका कृपा है, ये दवाई हमारे लिए, ये ही दवाई चाहिए हमको हमेशा ही इस बीमारी से दूर होने की, थोड़ा सहन कर लो। तांस्तिरिक्ष स्वभाव यम ही न व्यथयन्ति पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते, जो इसको सहन करता है, सहन करने का मतलब क्या? सुख हो जीवन है मरण है पर आपकी शरण मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आपका स्मृति आपका शरणागति मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जो इस स्थिति में है वो मुक्तात्मा है। यम ही न व्यथयन्ति पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीरम, वो धीर व्यक्ति धीरस्तत्र न मोहयति, वो मोहित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसे मालूम है शरीर का नियम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर को आने वाला है। तो जब जीव पतित होता है इस संसार में तो माया क्या करती है उसको उसको लेती है, आत्मा को लेती है और शरीर को लेती है, शरीर को और आत्मा को एब्सोल्युटली क्या तेल और पानी जैसा है, वो जोड़ ही नहीं सकता कोई, तो जोड़ती किस लिए? वो एक अहंकार का रस्सी लेती है, मिथ्या अहंकार का रस्सी लेके दोनों को वो गांठ जो है वो गांठ हम नहीं खोल सकते, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, वो गांठ हम नहीं, ऐसा ब्रह्म गांठ है वो खोल ही नहीं सकता कोई। पर यत अनुध्यासिना युक्ता एक है वो तलवार जो है भगवान का स्मरण, यद अनुध्यासिना युक्ता और जिसके हाथ में ये तलवार है, और तलवार मतलब क्या? भगवान का स्मरण। भगवान का स्मरण कब होगा? जब उनके बारे में सुना है, जब उनके बारे में कीर्तन किया है, जब उनका शरणागत हुए, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधन कटिया पूरा गाथ चिंतन थी उसको खोलते मत बैठो और खोले में वो कर्म साल लग जाएगा खुलेगा ही नहीं बड़ा सूक्ष्म गांठ है एक ही तरीका है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा तथा पदम तत् परिमार्गितव्य और ये गांठ जो है ये हमको इस भौतिक संसार से बांध के रखा है और इसमें से निकलना है काट दे बस मेरे भाई एक बार बोले बोले चार शब्द तोड़ो छोड़ो मोड़ो और जोड़ो तोड़ो तोड़ो मतलब इस इल्यूजन भ्रम को तोड़ दो ए मेरा जन से मोह हो अहम बने ये बड़ा मोह है और छोड़ो पर किसी के बारे में सुनना किसी के बारे में स्मरण करना किसी का कीर्तन करना किसी की पूजा करना किसी से प्रेम करना ये आत्मा का लक्षण है तो उसको मोड़ो वो प्रेम करने की प्रवृत्ति सुनने की प्रवृत्ति को मोड़ो और जोड़ो किससे भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना कीर्तन करना शरणागत होना प्रेम करना सात्वनां प्रति तो छिंदन्ति कोविदस्तस्य कौन कुरिया कथा रति ऐसा कौन मूर्ख आदमी है जो उसके कथा सुनने में रति उसकी इच्छा नहीं हो और दोपहर को चर्चा करेंगे कि ये रति कैसा उत्पन्न हो क्योंकि आप तब तक उस व्यक्ति का सतत स्मरण नहीं कर सकते जब तक उसके प्रति प्रेम नहीं हो प्रेम होना जरूरी जिसे प्रेम करते हो उसका स्मरण करना कोई तकलीफ नहीं है जैसे मैंने बताया गोपियों तो भगवान से प्रेम होना जरूरी जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक स्मरण होना मुश्किल है अब उस समय साधना भक्ति साधना भक्ति का मतलब प्रेम नहीं है पर फिर भी नहीं प्रभु आप ही मेरे प्रेम नहीं हो आप ही का शरण देना है आप ही का ये साधना भक्ति है हमारे लिए पर अगर प्रेम हो जाएगा तो फिर स्मरण करना तकलीफ नहीं जैसे आप बाहर की दुनिया में देखिए जब एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर रहा है 24 घंटे उसको स्मरण करता है सबूत क्या है बस में बैठा है वो बस के सीट के पीछे एक हृदय बनाता है और हे प्रिय तुम्हारा स्मरण एक तीर के समान है वो भी देखिए वो भी ऐसे ही बोलते यद अनुद्ध असिना युक्ता कर्म ग्रंथि बंधनम क्योंकि ये जो तीर है वो भेद के तीन गुण खून के दिखाते हैं आई एम लव स्वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जब किसी से प्रेम करता है उसका ध्यान उसके हृदय को आर पार करती है भेद देती है और ये जो ग्रंथि है गांड मान के पोता निद्रा जायो माया पीछा चीरा बोले माया बोली बेटा इधर ही सो जाए मेरे गोद में सो कृष्ण के गोद में जा लाज में मारूंगी तो फिर से मेरे चरण में आएगा और हम ऐसे दास बन जाते हैं ना जैसे भक्ति में ठाकुर आपका पुत्ता हूं लात नहीं मारो आपके चरण में ही पड़ूंगा तो जो माया की जो जल में पड़ जाता है लात मारती है पर फिर भी उसी के चरण में आता है तो स्मरण जो है तलवार के समान है वो लोग भी स्वीकार करते हैं देख सकते हैं और वो हृदय को आर पार करता है वो भी स्वीकार करते हैं वो लोग दिखाते हैं आपका स्मरण आर पार हो गया खून निकल रहा है आई लव सो एंड सो बट आई लव कृष्णा वो एक ऐसा तलवार है जो उसको पॉलिश करके एकदम चमका देता है और जो ग्रंथि है उसको निकाल देता है तो प्रेम ऐसा है प्रेम करोगे तो स्मरण होगा और एक प्रकार का स्मरण गांठ को कसता है और दूसरे प्रकार का स्मरण गांठ को काट के फेंक देता है निकालता भी नहीं है काट के फेंक देता है और वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होता प्रैक्टिकल उदाहरण देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए जिस स्थिति में प्रभुपाद थे उनके वैद्य जो आए थे कहा कि कोई और व्यक्ति इस स्थिति में रहेगा तो बहुत ही तकलीफ होगी उसको चिल्ला चिल्ला रहा है पता नहीं पर उस समय एक दिन पहले भी प्रभुपाद भागवतम का तात्पर्य बता रहे थे जयवेद महाराज पढ़ते थे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध का 13वां अध्याय और प्रभुपाद उसका परपूर्ण तात्पर्य, उनकी चेतना 100% ऐसा भीष्म पितामह, भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे पर युधिष्ठिर आके बैठा है, धर्मराज को धर्म बता रहे हैं। हमारी चेतना ऐसे हो ही नहीं सकती, हमको उधर थोड़ा पैर दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, अरे डॉक्टर को बुला लाना, सिंह को बुला, भगवान को बोला, नहीं होगा। हम बद जीव पर देखते हैं कि जिन लोगों ने पूर्ण रूप से शरण लिया है भगवान की कृपा से उस स्थिति में आ सकते, इसका मतलब वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, क्योंकि उसको समझ गया मैं शरीर नहीं हूं, शरीर आएगा जाएगा, कुछ तो होते रहेगा, सहन करो, पर आत्मा की हमने देखा, वो तो दूर की बात, बोले प्रभुपाद तो प्रभुपाद है, और भक्ति तीर्थ महाराज के जीवन में हमने देखा स्तो कृष्ण प्रभु हमारे जो शरीर छोड़े होंगे अभी 2-3 साल के भक्त, 4-5 साल के भक्त, कितने लोग हम लोग देखते हैं इस कॉल में, जो लोग शरण लिए हैं उनको हम देखते हैं उस स्थिति में 100% कोई और व्यक्ति जिसको कृष्ण भावना में मालूम नहीं है वो मन विचलित हो जाता है, बड़बड़ करने लगता है, वहीं तो मन जाता है, बहुत मुश्किल है उस समय। प्राण प्रयाण समय कई कंठावरोधन विदम स्मरण होते मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते हैं कुरुक्षेत्र महाराज कुरुक्षेत्र कि उस समय कैसा होगा, अभी जब मैं नौजवान हूं सब कुछ ठीक ठाक है, अभी मेरा प्राण चला जाएगा कि मेरा स्मरण हो गया, तो बहुत मुश्किल है ऐसा समय में स्मरण करना। पर अगर हमारी कोशिश रहेगी भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, रूपा जी की कृपा से, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। दोपहर को हम चर्चा करेंगे कि वो प्रेम कैसा प्राप्त किया जाए, अगर भगवान से प्रेम होने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से स्मरण होगा तो तलवार हाथ में आ जाएगा, और वो तलवार बड़ी आसानी से हम कर्म ग्रंथि को काट सकते हैं और परम धाम ततः पदम तत् परिमार्गितव्य ऐसे मार्ग की ओर बढ़े लगेंगे, यस्मिन गता अनिवर्तन की भूमि, वहां जाने के बाद फिर से भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष शांत दर्शन ऐसे संसार जाने की कोई जरूरत, तब हमारा जीवन सफल है, चाहे वो 10 दिन का जीवन हो, चाहे वो 10 साल का जीवन हो, या ब्रह्मा जी जैसा 10 करोड़ का जीवन हो। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। पास किया कि नहीं तो एक साल पढ़ा या 5 साल पढ़ा, एग्जामिनेशन के समय में तो पास किया गया। अंतकाल मानव स्मरण मुक्त, स्मरण बार बार बात है, स्मरण ध्यान मुख्य। इस तरह से बड़े कृपा पूर्वक भागवतम में एक्चुअली प्रभुपा जी कहते पहला स्कंद के अंदर में सब कुछ दे दिया, 3 वॉल्यूम पहला स्कंद का प्रभुपा दे गए थे, और उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम था मैं पहुंचूंगा क्या होगा, बोले पहले स्कंद के अंदर सब कुछ मैंने डाल दिया, जो भगवत धाम जाने के जो जो चाहिए सब डाल देना, तो उसको सिर्फ थोड़ा डीप में जाना चाहिए, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, नॉलेज, एक तो नॉलेज है ज्ञान, जानना कहां कहां क्या है, दूसरा है अंडरस्टैंड, थोड़ा गहरे में जाना, और गहरे में जानकर उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो साक्षात्कार होगा, नॉलेज विल सिंक डाउन, ज्ञानम विज्ञान सहित, और एक्चुअली हम शरीर से, शरीर के स्तर से परे जाएंगे और आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, आत्म साक्षात्कार। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, हरे गौर।